अरुणिमा को सबके साथ इस तरीके से जाता देख मेहमानों में आपस में खुसुर-फुसुर होने लगती है, लेकिन आस्तिक वहां पर अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए खड़ा था। तभी वहां पर सक्षम आता है और कहता है, क्या बात है राजा साहब, कोई परेशानी है क्या? पर आस्तिक ने बिना किसी परवाह के सक्षम से कहा, कुछ नहीं, बस मेरी सास की तबीयत खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो, पृथ्वी है ना, वो सब संभाल लेगा। तुम खड़े क्यों हो, चलो खाना खा लो। सक्षम थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, राजा साहब, आपकी सास की तबीयत खराब है, आपको नहीं लगता कि आपको इस वक्त उनके पास होना चाहिए? लेकिन तभी प्रणाली बीच में बोल पड़ती है, भाई के पास और कोई काम नहीं है क्या? अब यही बाकी रह गया है। भाई अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मेहमानों को छोड़कर अपने ससुराल वालों की खातिरदारी करेंगे, और वैसे भी वो लोग इतने खास भी नहीं है कि उन्हें देखने के लिए भाई को खुद जाना पड़े। मरी नहीं है अरुणिमा की माँ, बेहोश हुई है। प्रणाली की बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, पर वो प्रणाली से कहता है, प्रणाली जाओ जाकर खाना खा लो, अपने साथ सक्षम को भी ले जाओ। प्रणाली सक्षम को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रही होती है। सक्षम बीच में रुक जाता है और प्रणाली को देखते हुए हल्के गुस्से में कहता है, क्या जरूरत थी वहां पर ये सब कहने की? सक्षम की बात का प्रणाली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। सक्षम नामे सर हिलाते हुए बस प्रणाली को जाता हुआ ही देखता रह जाता है। एक तो घर में हुई बहस, ऊपर से यहां पर प्रणाली का रवैया। सक्षम असंतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्तिक का कमरा। पृथ्वी इस समय शारदा जी की नब्ज चेक कर रहा था। उनका बीपी तो आम लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा काम था। वो बेहोशी की हालत में कुछ कुछ बड़बड़ा भी रही थी, जिससे उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। अरुणिमा को जानवी ने संभाला हुआ था और मिश्री को कीर्ति ने। पृथ्वी ने शारदा जी को एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अरुणिमा अपनी माँ की हालत देखते हुए पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी क्या हुआ है मेरी माँ को? पृथ्वी ने कहा, अरुणिमा, आंटी जी की हालात सही नहीं है। उनका बीपी और लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। उनकी हालत से मुझे लगता है कि उनका बीपी कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता होगा। मेरी सलाह मानो तो आंटी जी को जल्द से जल्द अस्पताल में शिफ्ट कर दो। अरुणिमा पृथ्वी की बातों में चिंता के भाव महसूस कर सकती थी। उसकी बात सुनकर अरुणिमा का रोना और सादा बढ़ गया और वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। जानवी ने जल्दी से अरुणिमा को संभाला। रजत कहता है, वैसे तो हमने आंटी के लिए मेंटल असाइलम में बात करके रखी हुई है, पर एक दिन आंटी को वहां रखने के बाद हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमें ऐसा लगा जैसे कि आंटी की वहां पर ठीक से देखभाल नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम उन्हें वापस ले आए हैं। लेकिन जैसी उनकी हालत हो रही है, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं। कीर्ति जल्दी से कहती है, पृथ्वी तुम आंटी को अपने हॉस्पिटल में क्यों नहीं रख लेते हो? तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी तो उनका इलाज सही से होता रहेगा। अरुणिमा निकाशा भरी नजरों के साथ पृथ्वी को देखती है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। पृथ्वी कहता, नहीं अरुणिमा, तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल में बात करता हूँ और आंटी के लिए एक बेड अवेलेबल करवाता हूँ। पृथ्वी ने एक मिनट की भी देरी नहीं की, उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुला लिया और शारदा जी को अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। एम्बुलेंस के जाने के बाद पृथ्वी ने अरुणिमा से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आंटी जी को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना उनकी देखभाल करने के लिए, और मैं जल्द से जल्द दिल्ली के डॉक्टर की टीम को कहूंगा कि वो यहां पर आ जाएं और आंटी जी के केस को स्टडी करें। अरुणिमा रोते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, शुक्रिया पृथ्वी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन पृथ्वी ने कहा, इसमें एहसान कैसा है अरुणिमा, हम सब एक परिवार हैं, और अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो रजत मिश्री को लेकर कहता है, अरु एम्बुलेंस निकल चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे और मिश्री को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरुणिमा जल्दी से कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। तभी वहां पर आस्तिक की डरावनी और दमदार आवाज आती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जब एम्बुलेंस शारदा जी को ले जा रही थी, तब आस्तिक मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और अपनी इस जीत पर हंस भी रहा था। आस्तिक को वहां देखकर सब लोगों की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती हैं। रजत को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था आस्तिक पर उसे अरुणिमा और मिश्री दोनों को संभालना था। पृथ्वी कहता है, भाई शारदा आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करवाना पड़ा है। जिस तरीके के उन्हें दौरे पड़ रहे हैं वो खतरनाक हो सकता है। पर आस्तिक ने बेफिक्री के साथ कहा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना ही अरुणिमा डॉक्टर है। ये काम डॉक्टर का है, तो तुम अपना काम करो। बाकी मेहमान जा चुके हैं, मुझे लगता है कि अब मेरे ससुराल वालों को भी जाना चाहिए। उसके बाद आस्तिक जानवी और कीर्ति की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों अभी तक बाहर क्यों खड़ी हो, जाओ अपने कमरे में जाओ। जानवी थोड़ी हिम्मत करते हुए कहती है, भाई साहब हम सोच रहे थे शारदा आंटी को देखने के लिए हम सब अस्पताल जाते। लेकिन आस्तिक ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जाने से वो ठीक हो जाएगी क्या? डॉक्टर है वहां पर, लेना तो तुम कहीं जाओगी और ना ही मेरी पत्नी कहीं जाएगी। कीर्ति अरुणिमा को अंदर ले जाओ। अरुणिमा ये सुनते ही एकदम से कांप गई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ की इतनी बुरी हालत में भी आस्तिक उसे जाने नहीं देगा। वो रोते हुए आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के कानों के पास आता है और हल्के से उसके कान में कहता है, कल रात तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट दिया था, आज रात रिटर्न गिफ्ट लेना तो बनता है ना? मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई है और इस समय मेरा मूड सेट हो रखा है। कमरे में पहुंचे और कपड़े बदलकर मेरा इंतजार करो, मैं सक्षम और प्रणाली को गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। अरुणिमा हैरान चेहरे के साथ बस आस्तिक को आंखें फाड़े देखी जा रही थी और आस्तिक अरुणिमा से अलग होकर उसे हल्का सा आंख मारता है और फिर रजत और मिश्री को देखते हुए कहता है, तुम लोग गए नहीं अभी तक। मिश्री रोते हुए अरुणिमा को देखने लगती है कि तभी रजत मिश्री का हाथ पकड़ता है और गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहता है, चलो मिश्री। रजत मिश्री को देकर वहां से चला जाता है और कीर्ति और जानवी महल की तरफ जाने लगते हैं, पर पृथ्वी वहीं खड़ा था और उसने आस्तिक को देखते हुए कहा, भाई बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए मेरा फर्ज सबसे पहले है।